सब मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस विग्रह उत्सव कार्यक्रम में स्वागत है। तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो मनुष्य है मानव जाति, कौन सी जाति? तो जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय प्राणी है। क्या प्रिय है उसे? उत्सव, फेस्टिवल्स। तो मनुष्य को उत्सव प्रिय प्राणी कहा जाता है। और जब तक हमारे जीवन में फेस्टिवल्स नहीं हो, उत्सव नहीं हो, तो हमारा जीवन कैसा है? रेगिस्तान की तरह है, सूखा बंजर। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि जितने भी ईयरली कैलेंडर्स हैं उसमें कई सारे उत्सव हैं, और वो उत्सव केवल भगवान से संबंधित है। हर जो भाई कैलेंडर का जो फेस्टिवल आता है, उत्सव आता है, वो किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है, राम से संबंधित है। तो इसी कारण से भगवान का जो धाम है जिसे वैकुंठ कहा जाता है, उस वैकुंठ का दूसरा नाम भी है। वैकुंठ का दूसरा नाम यह है जिसे कहते हैं ऐसा स्थान जहां सदैव उत्सव होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं अखंडित उत्सव। क्या कहते हैं? अखंडित उत्सव। भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि वैकुंठ ऐसा स्थान है जहां उत्सव या फेस्टिवल्स कभी खत्म नहीं होते, निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्सव होते रहते हैं। और ऐसे उत्सव में क्या छुपा हुआ है? आनंद है। क्या है? हाँ, तो वैकुंठ में कौन निवास करते हैं? भगवान के भक्त और भगवान स्वयं कृष्ण। तो यदि हम अपने जीवन में भी नित्य नूतन आनंद अनुभव करना चाहते हैं और वैकुंठ जैसा वातावरण भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं और निरंतर सुखमय और आनंदमय जीवन भी चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का मतलब है उनका हमें भक्त बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता में कृष्णा बारंबार अर्जुन को ये बात बताते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम अपना जो मन है मुझे प्रदान करो। अपने मतलब कृष्ण चाहते हैं अर्जुन आप मेरे मन वाले हो। मन मना भव मत भक्तों, भगवान कहते किसका भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। तो कृष्ण गीता में हर समय हमें प्रेरित करते हैं। और कृष्ण ऐसे नहीं कि भगवान कोई निराकार वस्तु है, उनका कोई रूप आदि नहीं है। लोग कहते ना निर्गुण निराकार, तो भगवान हमेशा गीता में कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र, माम अहम। हमेशा भगवान अपने बारे में बोलते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि उनकी शरण ग्रहण की जाए या उनका भक्त बना जाए। लेकिन हम सब भी भक्त हैं। किसके भक्त हैं हम सब? माया के भक्त हैं। कोई देश का भक्त है, कोई अपने मोहल्ले का भक्त है, कोई अपने डिफरेंट जो पार्टीज का भक्त है, लेकिन कोई भगवान का भक्त नहीं है। भक्त किसी ना किसी का बनना पड़ेगा इस संसार में, सेवा किसी ना किसी की करनी पड़ेगी। दासत्व नौकर गुलाम किसी ना किसी का इस संसारिक जगत में बनना ही पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति उससे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरे शरण ग्रहण करने के अलावा, मेरा भक्त बनने के अलावा, यदि आप किसी और स्थान में शरणागत होते हो तो उसका परिणाम क्या है? अंत में दुख एव नये एवते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अलावा शरणागत होने में या मेरे अलावा भौतिक सेवा में नियुक्त होने के कारण व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, विपदाओं के सामने हमें जाना होगा। इसी कारण से कृष्ण हमें सदैव प्रेरित करते हैं। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, तो वहां भगवान कोई निर्गुण या निराकार नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान क्या है? निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार, मतलब जिसने हमें बनाया, हमारे पिता का आकार है, उसके पिता का आकार है, सबका आकार है, लेकिन हम सबका आकार और तू एक निराकार, लोग कहते हैं। और निर्गुण का मतलब कहते हैं कि उनमें कोई गुण ही नहीं है। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण है उनसे परे है, सत्व रजो तमो। और भगवान उनका आकार है, लेकिन उनका आकार या उनका शरीर हमारे शरीर के समान नहीं है। उनका शरीर या उनका आकार कैसे है? दिव्य है। इसी कारण से कृष्ण को अर्जुन भगवद गीता में ये बात भी बताते हैं। अर्जुन को भी ये प्रश्न अर्जुन के सामने आया था कि भगवान आप बताइए, आप साकार रूप में या आपका ये जो निराकार स्वरूप है एक प्रकार का, उसमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो अर्जुन कृष्ण कहते मैं एव मना अधस्त्वम, वो कहते हैं कि मेरे अनुसार मेरा ये जो दिव्य रूप है और उस दिव्य रूप की कोई आराधना करता है वो कौन है? सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए कृष्ण ने अपनी सेवा में नियुक्त होने वाले लोगों के लिए भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वो व्यक्ति महात्मा है जो भगवान की सेवा अपने जीवन में चूज करता है, भगवान की सेवा में जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है। इसी कारण से लोग सांसारिक लोग भगवान जब मनुष्य रूप में भी अवतरित होते हैं द्विगु श्याम सुंदर वृंदावन के जो कृष्ण है, तो सांसारिक लोग कहते हैं एक तो एक व्यक्ति है, एक मनुष्य के समान ही है। अधिकतर जो भौतिकता वाले बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कृष्ण भी एक महापुरुष हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अवजानांति मामूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो मुझे एक मनुष्य के भांति समझता है। इस कारण से कृष्ण हमें भगवत गीता से अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा जो रूप है वो दिव्य है और वो शाश्वत है। इसलिए ब्रह्मा जो इस संसारिक जगत के सबसे प्रथम जीव है, जब ब्रह्मा भगवान के सामने जाते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं तो पहले शब्द उनके मुख से निकलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ईश्वर कौन है, तो वो कौन बता सकता है, जो सर्वप्रथम है, ब्रह्मा है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा कहते हैं कि हे कृष्ण आप परम भगवान है, आप ईश्वर है, और आप कैसे हो, आपका जो विग्रह है वह सच चित और आनंद से बना है। सत का मतलब शाश्वत है, चित का मतलब ज्ञानमय है, और आनंद का मतलब आनंदमय है। तो भगवान का शरीर जो दिव्य है, जो इन तीन चीजों से बना है, लेकिन हमारा शरीर भी तीन चीजों का एक प्रकार से मिश्रण है, कफ वात और पित्त। तो हमारे शरीर में यदि हम देखेंगे तो मल मूत्र गंदगी के अलावा कोई और चीज नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर में होने के कारण भगवान के दिव्य रूप को भी उसी प्रकार से समझ लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्मवत मन्यते जगत, व्यक्ति अपने समान ही दूसरे को क्या करता है, देखता है, अपने समान ही दूसरों को समझता है। तो इसी प्रकार से हम भौतिक जगत में बद्ध हैं, भौतिक प्रकृति के अधीन हैं, कर्मों के बंधन में हैं, इसी कारण से भगवान को भी हम उसी प्रकार से समझ लेते हैं। लेकिन भगवान का जो शरीर है, भगवान का शरीर सर्वसाधारण शरीर के भांति नहीं है। तो भगवान के पांच प्रकार के रूप होते हैं। एक रूप क्या होता है, जिसे कहते हैं परह। परह का मतलब है कि भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में जो उनका रूप है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में, उसे परम रूप कहा जाता है। और भगवान का जो दूसरा रूप है उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में व्यू। व्यू का मतलब है जो भगवान अपने से अलग अलग विस्तारों में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण से कौन प्रकट होते हैं, बलराम, संकर्षण, वासुदेव, नारायण, अलग अलग विष्णु है, तीन प्रकार के विष्णु आदि। तो ये सब व्यू है भगवान के, जो अलग अलग विस्तार है। और भगवान तीसरा जो उनका रूप है उसको वैभव रूप कहते हैं, जो भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। और चौथा भगवान का जो रूप है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब है वो अंतर्यामी कहाँ निवास करता है, अंतर में, जिसे क्या कहते हैं, परमात्मा। क्या कहते हैं, सब बोलिए जोर से। तो भगवान के चार प्रकार के रूप है। तो लेकिन जो पांचवा स्वरूप है भगवान का वो कौन सा है, विग्रह रूप में। कौन सा, विग्रह, जो मूर्ति के या विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। तो भगवान के जो अलग ये जो चार रूप है उनको अप्रोच करना हमारे लिए असंभव है, और हमारे दृष्टि से भी क्या है, परे है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए एक उचित योग्यता की आवश्यकता है। अर्जुन ने जब भगवान के दिव्य रूप को, विराट रूप को देखने की इच्छा की, अर्जुन जानते थे कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वो मूल स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो भगवान को पूछते हैं कि हे कृष्णा आप किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति में हर स्थान में नियुक्त है, इस चीज को मैं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो भगवान कहते मैं अपना दिव्य विराट रूप प्रदर्शित करता हूँ। अर्जुन ने कहा मुझे तो देखा नहीं जा सकता, मेरे इस भगवान ने कहा इस भौतिक आंखों से आप मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कहते ददामि ते दिव्य चक्षुम, हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसी प्रकार से भगवान के इन रूपों को देखने के लिए दिव्य आंखों की आवश्यकता है। इस भौतिक संसार में भी हमें टेक्स्ट नजर नहीं आता, उसके लिए हम क्या धारण करते हैं, चश्मा धारण करते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार के नजदीक के जो टेक्स्ट है वो भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं जो इस चमड़े के भौतिक आंखों से क्या है, परे है। चर्म चक्ष देखे तार प्रपंचेर सम, मतलब चमड़े के आंखों से देखते हैं तो वो भगवान जिनका एक नाम अधो अक्षज है, अधोक्षज मतलब आंखों से क्या है वो, परे है, इसलिए कृष्ण का नाम अधोक्षज है। तो ऐसे अधोक्षज भगवान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन तभी देखा जा सकता यदि वो किसी के ऊपर कृपा करे। इसलिए उन्होंने अर्जुन के ऊपर कृपा की और अर्जुन को विशेष आंखें दी, दिव्य चक्षु दिए, और उस दिव्य चक्षु के द्वारा अर्जुन क्या कर पाया, भगवान के उस विराट स्वरूप को देख पाया। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा के द्वारा ही कोई व्यक्ति उनको देख सकता है, कोई व्यक्ति उनको समझ सकता है, और कोई व्यक्ति उनकी सेवा में नियुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान के जो पांच स्वरूप है या पांच फॉर्म्स है, रूप है, उसमें से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरलतम या सबसे जिसमें भगवान ने अपनी आहेतु की कृपा डाली है वो कौन सा स्वरूप है या रूप है, विग्रह रूप। भगवान के मूर्ति को मूर्ति नहीं कहा जाता, मूर्ति और विग्रह में क्या है, अंतर है। मूर्ति मतलब जो आपने किसी से कार्य कर ली, गांधी जी की मूर्ति और सड़क में चौराहे में क्या कर दी, खड़ी कर दी, और फिर जब गांधी जी की जयंती आती है तो एक साल भर कव्वे आकर उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना बिजनेस करके जाते रहते हैं। जब 2 अक्टूबर आता है तो सफाई वाले आते हैं, झाड़ू से उसकी सफाई करते हैं, और फिर एक दिन के लिए माला पहनाते हैं, फिर एक साल के लिए भूल जाते हैं। तो ये मूर्ति है। लेकिन विग्रह क्या है, विग्रह जो आध्यात्मिक होते हैं और जिनकी सेवा की जाती है, और विशेष रूप से शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान को 2 प्रकार से विग्रह रूप में उनकी सेवा की जा सकती है, मतलब मूर्ति विग्रह के रूप में तब विकसित होती है या तब कहलाती है जब विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। विग्रह की क्या की जाती है, आपने पढ़ा है ना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि भगवान शास्त्रों में ये आदेश दिए हैं कि किस प्रकार से उनकी विधिवत उपासना या सेवा करने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि भगवान उस मूर्ति में या उस विग्रह में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसके इनविटेशन पर, उनके एक शुद्ध भक्त के आदेश पर आने के लिए तैयार होते हैं। भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं या गुरुगण हैं, वो भगवान को निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके ऊपर कृपा करने हेतु या उनके आदेश का पालन करने के लिए भगवान अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर उस विग्रह में आकर निवास करते हैं। और उसमें आकर भगवान इसलिए आते हैं ताकि जो सारे बद्ध जीव है वो उनको सरलता से देख सके, उनकी सेवा कर सके, उनका स्पर्श कर सके, उनको स्नान कर सके, उनको नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित कर सके, उनको वस्त्र पहना सके। और ऐसा जब करता है कोई व्यक्ति तो धीरे धीरे उसकी जो आसक्ति भौतिक संसार के प्रति है वो खत्म होने लगती है, और उसका आसक्ति, उसका प्रेम किनसे होने लगता है, भगवान से होने लगता है। इसलिए भगवान के जो विग्रह है, मूर्ति है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो मूर्ति है, हाँ, तो वो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। तो मंदिरों में बड़ा आयोजन करके भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यज्ञ आदि मंत्रों का उच्चारण, हरि नाम का उच्चारण, भक्तों को प्रसाद वितरण करके। तो कोई कह सकता है कि हमने भी अपने घरों में, लोग जनरली वृंदावन जाते हैं तो उनको एक ही चीज नजर आती है, वृंदावन जाकर एक दिन का भक्ति जागृत हो जाता है और सारे दुकानों में लड्डू गोपाल नजर आते हैं। कौन से गोपाल, हाँ लड्डू गोपाल तो हम लेके आते हैं, लेकिन उनको लड्डू अर्पित करते क्या कभी, खुद दिवाली में लड्डू खाते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए लड्डू साल बीतते हैं लेकिन लड्डू गोपाल को लड्डू मिलता नहीं। वो लड्डू भगवान अपने वृंदावन से लेके आते हाथ में, वो देखते रहते हैं लड्डू को, लेकिन घर में कोई लड्डू बनाने के लिए तैयार नहीं है, सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रभुपाद कहा करते थे, गुरु का मतलब यह भी है, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्तश्च भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि जो गुरु है वो खुद भी भगवान के विग्रह की आराधना में लगे रहते हैं और उनके जो अनुयायी हैं उनको भी भगवान के विग्रह की आराधना में लगाते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, नियुंजतोपि नियुक्त करते हैं उनकी सेवा में। तो कभी कभी व्यक्ति बड़े उत्साह से जाता है, धाम में जाता है, वृंदावन आदि जाता है, वहां से लड्डू गोपाल उठा के ले आता है, ज्यादा महंगे तो होते नहीं, लड्डू गोपाल ले आता है, एक दो तीन चार दिन, एक हफ्ता दो हफ्ता बहुत भावावेश होता है, तब तक उनको रोज कुकिंग कर रहा है, उनके लिए कुछ ऑफर कर रहा है, और जैसे 15 दिन हो जाते हैं, एक महीना हो जाता है, तो घर के लोग कहते कौन करेगा उनकी सेवा, एक दूसरे को कहते तुम उनको उठाओ, तुम उनको भोग लगाओ, तुम उनको नहलाओ, मतलब वो हमें बोझ लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? बोझ लगने लगते हैं। हाँ, तो फिर प्रेम नाम की वस्तु नहीं है भगवान की सेवा में। तो जब हमें बोझ लगने लगते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे भक्तिमय सेवा की जो भावना है वो बहुत खराब है, बहुत नीचे नीचे हम जा रहे हैं। मतलब भगवान को आपने खुद इनवाइट किया अपने घर में, आप किसी व्यक्ति को अपने घर में इनवाइट करोगे कि प्रभु जी आप हमारे घर में आइए, और वो घर में आकर दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है, देखते ही लगता है कि अरे कहां से टेंशन ना, घर में आ रहे मेरे बोझ, घर में आ गए तो उनको बिठा देते हैं और फिर हम सोचते कि पानी ऑफर करो या नहीं करो, भोजन खिलाओ या नहीं खिलाओ, सोचते रहते कब जल्दी भाग जाएंगे, नहीं। तो वैसे हम भगवान के साथ भी करते हैं, भगवान को बुला लेते हैं वृंदावन से, कहां से आते भगवान, वृंदावन से चल के आते हैं, और उनके आने के बाद हम उनका ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान कोई मार्केट में जाकर खरीदने की वस्तु नहीं है, कि आप मार्केट में जाकर जैसे मॉल्स या वेजिटेबल मार्केट में जाते हो सब्जी आदि खरीद के लाते, वैसे नहीं है। जब भी हमें अपने घर में भगवान को लाना है, विग्रह को आमंत्रित करना है, तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरु का परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? आध्यात्मिक गुरु के परमिशन से ही हमें अपने घर में भगवान को इनवाइट करना चाहिए, या फिर जो उन्नत वैष्णव है उनके परमिशन से हमें लाना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान को मैं इनवाइट कर रहा हूं घर में, लेकिन मुझे यह भी जानकारी चाहिए कि कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, किसी बड़े व्यक्ति को आप घर में बुलाते हो तो ये भी पता होना चाहिए कि उनको कैसे हमें आदर सम्मान और ट्रीट करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, कोई कहता है, कुछ भावुक लोग होते ना, वो कहते हैं अरे भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, उनको खिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब खुद को भूख लगती है तो 56 भोग खाता है व्यक्ति, लेकिन भगवान को कहता है तुम भक्ति के भूखे हो, तुम वैसे ही रहो, आपको हम घर की कुछ चीजें खिलाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमें भगवान के जो विग्रह है उनकी सेवा के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए, उनको वैसे ही मार्केट में जाकर खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो पहले हमें उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और उनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तीन माध्यम से, साधु गुरु और वैष्णव। साधु गुरु और वैष्णव के द्वारा हमें साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा हमें उनकी सेवा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों के संगति में आना होगा और उनकी सेवा में नियुक्त होना होगा। इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान आते हैं इस जगत में केवल अपने शुद्ध भक्त के इन्विटेशन पर। इसलिए भगवान मूर्ति में आकर निवास करते हैं, जिसको प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन घर में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, घर में भगवान आते किसी गृहस्थ के घर में तो, बल्कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके कई ड्यूटीज हैं, कई कर्तव्य हैं जिसको करने चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उसे सदैव तैयार होना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, क्योंकि विग्रह की सेवा, जो विग्रह है भगवान की, उनकी सेवा तभी पूरी होती है जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, अन्यथा भगवान किसी भी सेवा को स्वीकार नहीं करते। चाहे हजारों हजारों छप्पन भोग लगाएं या गोल्ड की थाली में उनको अर्पित करें, वहां दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, लेकिन उनका नाम उनकी सेवा करने की उसके अंदर भावना नहीं थी। लेकिन पांडवों के पास कुछ नहीं था, लेकिन निरंतर पांडव द्रौपदी आदि कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पांडव निरंतर कृष्ण नाम का आश्रय लिए हुए थे, जिसके कारण कृष्ण उनकी हर सेवा को स्वीकार करने के लिए दौड़े आते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान को जब अलग अलग चीजें मंदिर में अर्पित की जाती हैं, आपने देखा होगा अगरबत्ती अर्पित करते सबसे पहले, फिर पंचदीप अर्पित करते हैं, है कि नहीं, हाँ, फिर जल अर्पित करते हैं, फिर एक वस्त्र अर्पित करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फिर जैसे चामर कर रहे हैं प्रभु जी तो चामर ऑफर करते हैं, वो दूसरा दूसरी चीज ऑफर कर रहे हैं, क्या है, मोर पंख फैन। तो ये जब ऑफर करते हैं तो उसके समय कृष्ण का एक नाम बोलना पड़ता है, तब कृष्ण उस सेवा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। हाँ, एतत् पाद्यं क्लिं कृष्णाय नमः, ऐसे बोलते हैं, कृष्णा आप इसको स्वीकार करिए, मैं आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, कृष्णा पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, कृष्ण का नाम लेना होता है। तो मतलब हर चीज विग्रह की सेवा में तभी पूर्ण है जब व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है। तो इसलिए कृष्ण के नामों का उच्चारण करना, उनके नामों का जप करना, ये वास्तव में विग्रह की सेवा की ये परिपूर्णता है। और भगवान के नामों का जप या उच्चारण करने के बजाय विग्रह की सेवा की पूर्णता हम प्राप्त या हासिल नहीं करते। तो पहली चीज तो गृहस्थ को है कि उसको अपने परिवार के साथ भगवान के शुद्ध नामों का या कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। और दूसरा ड्यूटी एक बताते शास्त्र कि उसको कृष्ण के सेवार्थ दान देने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा आसक्ति किससे है, अपने धन आदि से है। तो उसको जब हम कृष्ण की सेवा में थोड़ा लगाते हैं तो हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो कम होती है और हमारा मन कृष्ण की ओर दौड़ने लगता है। और एक गृहस्थ के कर्तव्य के बारे में शास्त्र कहते हैं कि हर एक गृहस्थ को वैष्णवों की या साधुओं की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करने के लिए उसको हमेशा तैयार होना चाहिए, हमेशा उत्साहवर्धक होना चाहिए। और जो चौथी चीज शास्त्र कहते हैं कि हर एक गृहस्थ व्यक्ति को भगवान की कथाओं को सुनने के लिए निरंतर तैयार होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के चरणों में गिरते हुए कहते कि हे नारद, भागवतम के सातवें स्कंध में आप पढ़ेंगे कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कई सारी चीजों का वर्णन करते हैं। तो युधिष्ठिर कहते कि मैं तो ये गृहस्थ हूं और मेरा आसक्ति अपने धन साम्राज्य वस्तुओं से बहुत अधिक लगाव है, और ये लगाव ही मेरे कष्टों का या विपदा का कारण है। इसलिए हे नारद मुनि, आप क्या करो, निरंतर आकर मुझे कृष्ण कथा सुनाया करो। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त भी ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और पांचवी चीज शास्त्र कहते हैं कि हर एक गृहस्थ व्यक्ति को क्या होना चाहिए, विग्रह की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। हाँ, जब हम अपने घर में भगवान के अर्च्य विग्रह रखते हैं, चाहे अर्च्य विग्रह रखें या सुंदर सा अल्टर होकर उसमें फोटोज रखें, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब घर में हम विग्रह रखते हैं, जनरली लोग कहते हैं ना, हमारे घर में भी मंदिर है। अब मंदिर कहाँ रखते हैं, अपना ड्राइंग रूम तो बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान के लिए इतना सा छोटा सा मंदिर बनाते हैं 200 रुपए का या 100 रुपए का, चार लकड़ और उसके अंदर लड्डू का फल घुसने के लिए भी दिक्कत होती है, उतना ही भगवान वहां रहो और कहां रखेंगे, दीवार के किसी कोने में टांग के रखेंगे ताकि किसी को दिखाई न दे, क्योंकि घर का शोक खराब ना हो जाए, है ना। घर सुंदर लगता है ना, सारी चीजें फोटो अपने प्लेस में है, लाइटिंग अपने प्लेस में है, ये भगवान का आल्टर बेस में कहां आ गया, तो हमें लगता है शोक खराब हो रहा है, घर का ड्राइंग रूम खराब हो रहा है। तो भगवान को ऐसे स्थान में रखते हैं कि जहां कोई आने वाला तो देखे ना, और घर के रहने वाले भी गलती से वहां ना पहुंचे। केवल ये दिखाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, कि हमने भी हमारे घर में भगवान को रखा है। लेकिन क्या भगवान को हमने रखा है तो उनकी सेवा करने के लिए उतनी अच्छी मात्रा में हम तैयार हैं? लेकिन हम अपने हृदय में झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है, और वो अर्चा विग्रह हमारे ऊपर बोझ हो गए हैं। केवल इसलिए शास्त्र कहते हैं घर के जो विग्रह है उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर के जो विग्रह है उनको कहा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा कैसे होती है, प्रेम प्रतिष्ठा। कौन सी प्रतिष्ठा? प्रेम प्रतिष्ठा। तो घर के विग्रह कोई व्यक्ति अपने हृदय में रियली भावना रखता है गुरु के आदेश या परमिशन के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। कैसे आते हैं? दौड़ते हुए आते हैं, इसलिए उसे प्रेम प्रतिष्ठा कहा जाता है। और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि घर में विग्रह रखे भी तो कौन से विग्रह रखने चाहिए हमें? गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्ण जुगल किशोर, इन विग्रहों का होना आवश्यक है जिनके हम सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सेवा की भावना गृहस्थ आश्रम में होकर नहीं होती तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाता, वो ग्रह अंधकूपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह वो घर नहीं है, वो एक अंधा कुआ है जिसमें सारे लोग गिरे हुए हैं और तड़प रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थान में कृष्ण नहीं है। इसलिए घरों का नाम रखा जाता है भवन। क्या रखते हैं नाम? भवन। तो भ का मतलब क्या है? भगवान। क्या है? जहां भगवान का निवास है उसको भवन कहते हैं, और जब भ को हटा देते हैं हम तो केवल क्या बनता है? वन ही रहता है। तो वन में रहने वाले कौन है? पशु है। हाँ, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा जन्म तो आसुरी परिवार में हुआ था, और मैं आसुरी परिवार में जन्म लिया, और सारे जो मेरे आसुरी परिवार के लोग है, सदस्य है, वो सारे सांप के भांति क्रूर है और बहुत ईर्ष्यालु है, क्योंकि सांप में एक गुण, एक दुर्गुण बड़ा है, कौन सा है? यन्वी, ईर्ष्या। तो उन्होंने कहा ये सारे ईर्ष्यालु हैं, और ऐसे सांपों के बीच में ही जो सांपों का कुआं था उसमें मैं गिरा हुआ था, लेकिन आपके एक भक्त थे। कौन थे भक्त? नारद मुनि। कि आपके महान भक्त कृष्ण नारद आए और उन्होंने मुझे वो सांप के कुएं से बाहर निकाला। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम चलो मेरे धाम वापस। प्रहलाद कहते कैसे मैं वापस आऊं, जिन्होंने मुझे ऐसे कुएं से बाहर निकाला है, सड़ा हुआ जीवन था मेरा, तो मैं, मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है? उनकी सेवा करना। हाँ, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। तो कृष्ण जब प्रहलाद के मुख से इस बात को सुनते हैं तो भगवान आनंदित हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म का एक प्रमुख कर्तव्य है कि उस गृहस्थ धर्म में, उस गृहस्थ जीवन में, हमारे जीवन में भगवान के अर्च विग्रह के रूप में सेवा करने की तत्परता होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? साधु गुरु और वैष्णव की सेवा करने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। जब हम ऐसी विग्रहों की सेवा करते हैं, क्यों ऐसे विग्रह की, भगवान के विग्रह या मूर्ति की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की भावना है। कौन सी भावना है? भोग करने की भावना का चश्मा हमने पहना है,
पीला चश्मा पहनेंगे पीला कलर का तो हमें सारा जगत पीला दिखाई देगा। तो हमारे आंखों ने एंजॉय करने की भावना का चश्मा पहना है। जहां भी हमारी दृष्टि पड़ती है वो वस्तु हमें लगता है कि ये मेरे भोग के लिए बनी हुई है। जहां भी हम अपनी नजर डालते क्या लगता है, ये वस्तु ये व्यक्ति मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। और इसी भावना को बदलना है। भगवान से अलग होने का यही एकमेव कारण है कि भगवान से अलग होकर हम एंजॉय करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये कृष्ण ही क्यों स्वामी है, कृष्ण ही क्यों मास्टर है, मैं भोगता हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूं, मैं ईश्वर बनना चाहता हूं। तो भगवान इस भौतिक जगत में भेजते हैं। तो हमें हमारी जो ये भोग भावना है, भोग वृत्ति है, उसको कौन से भावना में बदलना है, सेवा भावना में। कौन सी भावना, सेवा भावना या सेवा की जो वृत्ति है। तो इसलिए वो तभी बदल सकती है जब हम सेवा के जो योग्य परम पुरुष कृष्ण है उनको अपने घर में स्थान प्रदान करते हैं। क्योंकि घर में क्या होता है, पत्नी बच्चे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे सुख के लिए बना हुआ है, वो मेरी सेवा करे। पत्नी सोचती मैं घर के स्वामी नहीं हूं, मास्टर हूं, कंट्रोलर हूं, मैं घर के ड्यूटी हूं, क्या हूं, मेरी घर में क्या होनी चाहिए, सुबह दर्शन आरती होनी चाहिए। पति सोचते ऑफिस से पहले मेरी दर्शन आरती होनी चाहिए, सब घर के मुझे प्रणाम करो। बच्चे तो आकड़ जाते हैं स्कूल जाने से पहले, हाँ माता पिता उनको छोड़ने आ जाए। तो हर एक व्यक्ति घर का मूर्ति बना हुआ है, विग्रह बना हुआ है, हर एक को लगता है कि ये सब लोग मेरी सेवा करें, मुझ पर अटेंशन होना चाहिए उनका। तो इस प्रकार की भावना घर में रहकर भी हर एक व्यक्ति के हृदय में है और भोग करने की भावना अत्यधिक तीव्र है। इसी कारण से सबके सेंटर में किसको लाके रखना चाहिए, हमें कृष्ण को लाके रखना चाहिए। इसी कारण से दक्षिण भारत में वो स्टोरीज आपने सुनी होगी, रावणाचार्य, हाँ श्रीरंगम में वो स्थान है श्रीरंगम, इस भौतिक जगत के सबसे पहले विग्रह कोई है तो वो रंगनाथ के हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के उनसे सारे विग्रह उत्पन्न होते हैं। तो एक महान आचार्य थे दक्षिण भारत में जिनका नाम था रावणाचार्य। रावणाचार्य कावेरी में जब स्नान करके निकले बाहर, उन्होंने अपने एक शिष्य के साथ जा रहे थे तो आगे उन्होंने देखा कि एक जुलूस जा रहा है। हाँ क्या जा रहा है, जुलूस, जुलूस मीन्स भगवान पालकी में जा रहे थे और सारे लोग नाच रहे थे, मृदंग की ध्वनि में गा रहे थे, हाँ चिल्ला रहे थे। और उसमें से उन्होंने एक अमेजिंग अलग से कुछ हटके एक दृश्य देखा, इतने सारे लोग उस पालकी के साथ जा रहे हैं, उसमें उन्होंने एक एक युवक को देखा, उनका नाम था धनुर्दास। तो वो युवक को देखा, वो युवक कैसे जा रहा था, सारे लोग इस तरफ ऐसे चल रहे हैं, तो उस युवक ने अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, छतरी, अम्ब्रेला छतरी ना, छाता पकड़ा हुआ था और एक हाथ में फैन था, ऐसे चामर पकड़ा हुआ था। और वो छाता उसने एक युवती के ऊपर, जो सुंदर आंखों वाली युवती है, उसके ऊपर रखा था ताकि उसको धूप ना लगे, और उसके आंखों में देखते हुए ऐसे जा रहा था पीछे पीछे, और एक हाथ से उसको क्या कर रहा था, फैन कर रहा था ताकि उसको गर्मी ना लगे। और सारे लोग भगवान के साथ जा रहे, नाच रहे, गीतों का गान कर रहे हैं, लेकिन रामानुजाचार्य महान आचार्य हैं, हाँ गुरु, उन्होंने देखा ये क्या है, उन्होंने अपने शिष्य को, अरे अरे जाओ जाओ, उसको बोलो आपको यतिराज रामानुजाचार्य बुला रहे हैं। तो वो गए, उनके एक शिष्य कुरेश, वो गए और उन्होंने कहा कि हरि बोल प्रभु जी। तो प्रभु जी तो बिजी थे, प्रभु जी क्या थे, बिजी थे, उनको तो याद ही नहीं कौन आवाज लगा रहा है पीछे, दो तीन बार चिल्लाना पड़ा तब उन्होंने देखा कि अरे मुझे पीछे कौन बुला रहा है। तो जब देखा उन्होंने कहा आपको रावणाचार्य बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुरंत उनको आना पड़ा, तो छाता पकड़ के आ गए, फिर आके रावणाचार्य के पास आए। रावणाचार्य ने कहा हे धनुर्दास, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा धनुर्दास, धनुर्दास में सो बड़ा पहलवान सा था, हट्टा कट्टा सुंदर नवयुवक था। उन्होंने कहा, धनुर्दास तुम क्या देख रहे थे छाता पकड़कर और फैन करते हुए? वो कह रहे थे कि मैं बचपन से अपने जीवन में एक चीज की तलाश में था, और किस चीज की तलाश में? सुंदर आंखों को मैं देखना चाह रहा था, और मैंने बहुत अपने जीवन में तलाश किया, फाइनली मुझे कोई सुंदर आंखें नहीं मिली, लेकिन मैंने कई ढूंढते ढूंढते वो जो युवती है उसकी आंखें क्या है, सबसे सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, तुम्हें मैं इनसे भी सुंदर आंखों को दिखाऊं, तुम आंखों को त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं तो सुंदर नयनों को देखना चाहता हूं। तो रामानुजाचार्य ने कहा, कल सुबह मेरे पास आओ, आश्रम में आओ। फिर धनुर्दास फिर गया, वो अम्ब्रेला पकड़ा जब तक वो यात्रा कंटिन्यू हो रहा था। फिर जैसे सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में रामानुजाचार्य ने कहा, हमारे आश्रम में मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे। कितने बजे? 4:30 बजे। आप लोग भी आ सकते हैं यदि सुंदर आंखों को देखना है। तो जब रामानुजाचार्य ने कहा सुबह सुबह आप आ जाओ, तो वो आ जाता है और उनका हाथ पकड़ते रामानुजाचार्य और उनको अपने साथ ले जाते मंदिर में। वो विशाल मंदिर जहां भगवान रंगनाथ लेटे हुए हैं अनंत शेष एक सांप पर, जाते हैं और उनका जैसे दरवाजा खोलते हैं, रामानुजाचार्य उनको अंदर घुसाते हैं अल्टर में और कहते, देखो ये है सुंदर आंखें वगैरह की, कृष्ण की। जैसे उस युवक धनुर्दास ने भगवान की उन आंखों को देखा, तो उसकी आंखों से क्या होने लगा? आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा कि मैं इस भौतिक संसार में सुंदर आंखों की खोज में था, लेकिन ऐसी भी सुंदर आंखें हो सकती है संसार में? ऐसी सुंदर आंखें मैं कभी भी देखी नहीं है। तो उनका हृदय पिघल गया और तब से वो जो धनुर्दास से भगवान के जो विग्रह है श्री रंगा में रंगनाथ, उनकी सेवा में लगे। और तो हम देखते हैं कि ऐसी उनकी जो भोग की भावना थी उतनी सेवा की भावना में बदले कि रामानुजाचार्य ने कहा, वो जो युवती है उनका नाम था हेमांग, उनसे विवाह करो। उनका विवाह जब हुआ, वो दोनों को दीक्षा देते रामानुजाचार्य, और वो दोनों इतने महान भक्त बनते हैं कि जिनका हृदय या उनकी जो सेवा की भावना है, वो जो रंगनाथ के जो विग्रह है, कृष्ण के विग्रह, उनके लिए 100% था। इतना अधिक कि उनके आश्रम में मंदिर में रहने वाले भक्तों से भी अधिक सेवा की भावना किनके हृदय में थी? ये दो पति पत्नियों के हृदय में, हेमांग और धनुर्दास। तो एक बार रामानुजाचार्य ने देखा कि ये सब मंदिर में आश्रम में रहने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी ये सोचते कि हम बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, और ये जो धनुर्दास था इतना सेवक हो गया था कि रामानुजाचार्य कभी चलना भी हो तो उनके कंधे में हाथ रख के चलते थे। तो सबको लगता था, अरे इनके कंधे में हाथ रख के चलते हैं, हम इतने क्लोज हैं। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि सारे लोग उन दोनों से ईर्ष्या करने लगे हैं, मंदिर के निवासी। तो उन्होंने कहा कि इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो रामानुजाचार्य देखते कि जब रात्रि का समय हुआ था, तो मंदिर में रहने वाले जो भी भक्त सन्यासी थे उनके जो वस्त्र है एक डोरी से दूसरे डोरी में डाल दिए, एक रूम के सामने से दूसरे के रूम के सामने चेंज कर दिया। सुबह जब उठे तो सब लड़ाई करने लगे आपस में, और उस समय रामानुजाचार्य ने दो भक्तों को भेजा कि जाओ उनके घर जाओ और घर से चोरी करके सामान लेके आओ, मंदिर में धन की कमी है। तो दो भक्त जाते हैं उनके घर में, तो घर में वो धनुर्दास नहीं थे, उनकी पत्नी हेमांग वहां सो रही थी। तो हेमांग ने जब देखा कि अरे मंदिर के भक्त घर में विंडो से अंदर आ गए हैं और वो चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, तिजोरी भी खोल ली, अलमारी भी खोल ली, और वो जब सो रही थी तो उन्होंने बहुत सारे गहने पहने थे अपने शरीर में, और ऐसे एक और वो सो गए थे। तो उन भक्तों ने क्या किया, उनके एक आधे साइड के सारे आभूषण निकाले, एक पांव के, एक हाथ के, बाजू बंद के, कान के और नाक के। तो उनको लगा, और फिर लगा कि दूसरे साइड के निकलते तो और अच्छा होता। तो उस माता जी इतना सरेंडर थी ये दोनों पति पत्नी, उन्होंने सोचा कृष्ण की सेवा के लिए वो फिर अपना करवट बदलना चाह रहे थे, कि एक ओर से ले रहा है आप दूसरी ओर के भी ले जाओ। तुम करवट बदलने के लिए गए तो ये भक्त डर गए, उनको लगा जग गई, भाग गए वहां से। वो जाते रावणाचार्य के पास, वो जो जो भी उन्होंने चुराया था। फिर रावणाचार्य कहते हैं अभी तुम जाओ, वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं वो चेक करो। तो जो धनुर्दास है वो घर वापस आते तो घर में पत्नी कहती है कि मंदिर के लोग आए थे, दो भक्त आए थे, वो चोरी करके ले गए आधा सामान और मुझे लगा और मैं थोड़ा हिल गया ऐसे करवट बदलने के लिए, तो वो लोग भाग गए। धनुर्दास ने डांट लगाना शुरू कर दी, कैसे तुम निष्क्रिय हो कृष्ण की सेवा के लिए, हाँ तुम इतना भी नहीं कर सकते। तो बहुत प्रकार से उन्होंने डांटा। तो उन्होंने कहा मैं तो चाह रही थी करवट बदल के दूसरे ओर के भी गहने ले जाए, लेकिन वो बेचारे डर के मारे भाग गए। तो इस प्रकार से दोनों की जो सेवा की भावना है इतनी अत्यधिक थी कि जो दो भक्त विंडो में खड़े होकर सुन रहे थे और वो उनका हृदय भी पिघल गया। और रामानुजाचार्य ने सारे भक्तों को ये शिक्षा दी कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भोग की भावना है वो सेवा की भावना में बदल जाती है, जब हम विग्रह की सेवा में क्या करते हैं नियुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को विग्रह की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि विग्रह की सेवा करने से क्या होता है, या घर में चाहे एक सुंदर सा अल्टर हो, मंदिर हो छोटा सा, मूर्ति नहीं तो क्या होने चाहिए वहां, प्रॉपरली फोटोग्राफ्स होने चाहिए, लैमिनेट या फ्रेम किए हुए हैं, सिस्टमैटिकली रखना चाहिए, सबसे पहले कृष्णा राधा कृष्णा हो, हाँ इस प्रकार से नीचे तक उनको सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, और व्यक्ति को उनकी सेवा रोज करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम रोज उनकी सेवा करते घर के वो केंद्र बिंदु बनते हैं, तो हम भगवान से न चाहते हुए भी प्रेम करने लगते हैं। इस संसार में जिसको आप सेवा करोगे न चाहते हुए उनसे आप प्रेम करने लगोगे, तो वैसे ही है। क्योंकि घर में आजकल प्रमुख स्थान पर टेलीविजन को हम रखते हैं, इसलिए सारे लोगों का प्रेम किससे हो गया है, टीवी से हो गया है, और सबका चरित्र दूषित हो गया है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। किसका प्रभाव है, टेलीविजन का प्रभाव है। तो और सब लोग इकट्ठा आते हैं केवल टेलीविजन देखने के लिए, फिर गायब हो जाते हैं। तो इसलिए टेलीविजन की जगह कौन होना चाहिए, कृष्ण का मंदिर विग्रह होने चाहिए घर में। तो जो हम वो केंद्र बिंदु बनते हैं घर के, तो घर के सारे कार्यकलाप कृष्ण से संबंधित होते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं, मार्केट में जाते हैं तो अरे सब्जियां खरीदनी है ताकि घर में जो कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल है उनकी सेवा के लिए मुझे बनाना है। कोई फेस्टिवल आता है हम अपने कपड़ों की चिंता करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं गोपाल या कृष्ण के लिए है, मुझे नए वस्त्र लेने हैं। हम का ट्रैवल करते हैं तो भी सोचते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, मां मानु स्मरण युद्ध अर्जुन तुम फाइट करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए फाइट करो। तो उसी प्रकार से हम अपने सारे कार्यों को करें लेकिन उसमें कृष्ण का स्मरण अत्यधिक आवश्यक है। तो कृष्ण के स्मरण को और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान को घर में स्थान देना बहुत आवश्यक है। तो भगवान को घर में स्थान देते हैं तो कृष्ण से आप प्रीति करने लगते हैं। ये कोई पत्थर या मार्बल आदि की या धातु की मूर्ति नहीं है, इसलिए शास्त्र कहते प्रतिमा नहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागे कर तुम्हें आकार्य करण, कि आप कोई मूर्ति नहीं हो साक्षात कृष्ण हो, लेकिन ये साक्षात कृष्ण को देखने की भावना कैसे विकसित होगी, जब हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं। इसलिए कोई कह सकता है कि कलयुग का धर्म तो हरि नाम संकीर्तन है, लेकिन हमें आर्चे विग्रह की सेवा करते हैं तो ये कैसे उचित है। तो हरि नाम संकीर्तन भगवान का नाम जब करना हमारे लिए सरल हो जाता है जब हम क्या होते हैं, विग्रह की सेवा में लगते हैं। तो जब विग्रह की सेवा में लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण, रजोगुण किसका लक्षण है, भोग करने की भावना का, तमोगुण निद्रा और आलस का। तो जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो रजो और तमोगुण अपने जीवन से हट जाता है और सबसे पहले सत्वगुण की वृद्धि होती है, और सत्वगुण में जो व्यक्ति आता है तो वो दृढ़ हो जाता है भगवत कार्यों में। हरि नाम लेना उसके लिए अत्यधिक सरल हो जाता है और निरंतर वो कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब विग्रह की सेवा करते हैं तब इन गुणों से परे होने लगते हैं और हमारे जो बैड हैबिट्स है वो खत्म होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं फिर व्यक्ति उसके अंदर दृढ़ता आती है भगवान का नाम उच्चारण करने में, भगवान की सेवा आदि करने में। इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि घर में हमें कृष्ण को स्थान देना चाहिए और उनकी सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें तत्पर होना चाहिए। जब आर्य विग्रह की सेवा करते हैं तो हमें नीचे की योनि में जाने में वो सेवा हमें बचा लेती है। जैसे गजेंद्र थे, गजेंद्र हाथी अपने सारे हाथिनियों के साथ पूरे परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने गया एक जलाशय में, तो वहां जब गजेंद्र हाथी स्नान कर रहा था अपनी पत्नी बच्चे फ्रेंड सर्कल्स के साथ, तो उस समय उस गजेंद्र हाथी का पाव एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और मगरमच्छ ने जब पाव पकड़ा तो वो हाथी गजेंद्र, गजेंद्र मीन्स गज इंद्र, इंद्र मीन्स किंग, हाथियों में जो राजा था पूरे पृथ्वी में गजेंद्र सबसे बलवान हाथी, वो थोड़ा चिल्लाए भी तो हजारों किलोमीटर सिंह भाग के चले जाते, जंगल छोड़ के चले जाते थे, इतना पावरफुल था एक गजेंद्र। वो चलता भी था तो सारे प्राणी भागकर दूर चले जाते थे। तो ऐसा गजेंद्र हाथी जब जलाशय में स्नान कर रहा था, मगरमच्छ ने जब उसका पाव पकड़ा तो उसने याचना की बचाने की, पत्नी बच्चे सब भाग गए, कोई बचाने के लिए आया नहीं, मित्र सब भाग गए और वो अकेला इस फाइट से स्ट्रगल कर रहा था। एक साल तक लंबा उसने स्ट्रगल किया, मगरमच्छ जल में निवास करता है तो वो शक्तिशाली है, वो उसको खींचते जा रहा था और अचानक उनको स्मृति आई। भगवान कहते ना मत स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, हे अर्जुन मैं ही स्मृति देता हूँ और मैं ही भुलाता हूँ। जैसे हम सुबह उठते हैं, रात को सोते समय थोड़े हमें याद रहता है हम पुरुष है स्त्री है मालिक है नौकर है नहीं, और क्या क्या करना है, सुबह उठते याद आती है कि इतने काम पेंडिंग है, तो कौन हमें स्मृति दिलाता है, भगवान कहते हैं। तो जब इस गजेंद्र को अचानक स्मृति हो आई, और क्यों स्मृति हो आई, शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने हरि अर्चना सेवा, हरि की अर्चना की थी उन्होंने। ये गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे और इंद्रद्युम्न राजा वो भगवान अपने घर में सेवा करते थे विग्रह की। जैसे भागवतम में और एक राजा का वर्णन आता है महाराज अमरीश, जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया था। भगवान के विग्रहों की सेवा करते तो क्या होता है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं कान नाक आंखें जीवा त्वचा सर पांव हाथ सारे भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। उनके सामने हम प्रणाम करते हैं, हाथों से उनके लिए कुकिंग करते हैं, चलकर उनके लिए कुछ लेके आते हैं, जीवा से कीर्तन करते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, शरीर से उनके लिए प्रणाम करते हैं। तो ऐसे घर में जब भगवान निवास करते हैं तो उनकी सेवा में हमारा मन वाणी शरीर सब नियुक्त होता है। तो ये राजा इंद्रद्युम्न ने विग्रह की सेवा की थी जिसके कारण अचानक उनको स्मृति हो आई, इवन वो कौन से बॉडी में थे, हाथी के शरीर में थे। तब उनके मुख से अचानक प्रार्थना निकली, उस गजेंद्र हाथी ने अपनी सूंड बाहर ऐसी की लंबी, देखा सामने कमल पुष्प है, अपने सूंड से उस कमल पुष्प को उठाया और आकाश में ऐसे फेंकते हुए उन्होंने कहा नारायणम अखिल गुरुर भगवान नमस्ते, हे नारायण हे कृष्ण अखिल जगत के गुरु मैं पुष्प अर्पित करके आपको क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। कृष्णा दौड़ पड़े, भागवतम कहते हैं कि भगवान ने अपने साथ गरुड़ को भी नहीं लिया, खुद दौड़ के आए हैं इस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान की जो विग्रह सेवा की जो शक्ति है वो इतनी पावरफुल है। जब हम इस प्रकार से उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं तो हमारा भौतिक जो आसक्ति है वो खत्म होने लगता है या कम हो जाता है और हम कृष्ण से धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, प्रीति करने लगते हैं। तो ऐसे हजारों उदाहरण है कि भगवान जब भक्तों की सेवा की भावना अत्यधिक होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वृंदावन आप जाते हो तो वृंदावन में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? राधा रमन टेम्पल। कौन सा मंदिर? राधा रमन। वृंदावन में जाकर व्यक्ति को 7 देवालय का दर्शन करना चाहिए, 7 टेम्पल्स, जिसको कहते हैं सप्त देवालय। तो उसमें से एक है राधा रमन, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, दक्षिण भारत से जब वृंदावन आए और वो जब वहां चले गए गंडकी स्नान करने के लिए नेपाल, तो स्नान कर ही रहे थे, अपने कमंडलों से जल ले रहे थे, या उनके हाथ में कई सारी शालिग्राम शिला आते थे, उन्होंने कहा इतनी 10-12 शालिग्राम शिला का क्या करो, छोड़ देते थे, फिर जल लेने का प्रयास करते तो शिला जंप मार के उनके हाथ में आते थे। तो कुछ शिला को ले आए, उसमें से एक शालिग्राम शिला थी जिसका नाम था दामोदर शिला, उसको वो ले आए वृंदावन में, उनकी सेवा करने लगे। शालिग्राम शिला थे राउंड, छोटा सा पत्थर जैसी होती है, तो उनकी सेवा करने लगे, उसको चंदन अर्पित करना, तुलसी अर्पित करना, गंगा जल अर्पित करना। और एक दिन कोई धनाढ्य व्यक्ति वृंदावन आया और वो वृंदावन के मंदिरों में सब मंदिरों के लिए भगवान जो पहनते वो वस्त्र दान करना चाह रहा था, सब मंदिरों में दान कर रहा था। इनको लगा मेरे पास भगवान का रूप होता, उनके हाथ पांव आदि होते हैं, शालिग्राम शिला के तो हाथ पांव नहीं है, इनके हाथ पांव होते हैं तो मैं उनको वस्त्र पहनाता, उनके हाथों में बांसुरी पकड़ाता, उनको चंदन करता, हाँ, और उनके अभिषेक आदि करता उचित रूप से। तो ऐसा वो सोचते हुए जब सो जाते हैं तो सुबह क्या देखते हैं, जो दामोदर शिला थी, हाँ, सुबह वो सेवा करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं वो जो दामोदर शिला है वो परिवर्तित हो जाती है और त्रिभंग ललित रूप में, हाँ, कृष्ण के रूप में वो प्रकट होती है। आज भी आप जाते हो तो उनका दर्शन करते हो वृंदावन में राधा रमन के रूप में। इस प्रकार से जब भक्त की सेवा की भावना होती है तो कृष्ण सेवा लेने के लिए उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसी कारण से शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, या घर में भगवान को हमें आश्रय देना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के घर में कम से कम एक मंदिर होना चाहिए जिसमें क्या हो, हाँ, कुछ नहीं तो भगवान के प्रॉपर फोटोग्राफ्स हो, तुलसी हो, और उनकी रोज सेवा करें। इवन जो लड्डू गोपाल आदि हम रखते हैं, हाँ, व्यक्ति तो घर के लोग तो आलसी हो जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कौन सेवा करेगा उनकी, हाँ, महीने में एक बार वस्त्र सोचते हैं, जब जन्माष्टमी आते हैं तब वस्त्र सोचते हैं कि नए वस्त्र लाने हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं, हर महीने नए वस्त्र खरीदते हैं। तो भगवान के जो विग्रह है, हाँ, गोपाल आदि, उनकी कम से कम एकादशी के दिन उनका अभिषेक करना चाहिए, रोज हो सके तो उनको वस्त्र चेंज करने चाहिए। हम करते कि नहीं करते, हाँ, तो इस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए व्यक्ति को, और बिना भूले रोज कम से कम 2 बार उनको भोग अर्पित करने चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने लिए पूरा थाल भर के बनाएंगे और गोपाल के लिए मिश्री और मक्खन, कभी तो मिश्री का भोग लगाते हैं, 2-4 बादाम काजू रख के दूसरे दिन सोचते भगवान को कुछ खिलाएंगे। जो भी चीज इसमें कुक हो किचन में, वो कहां जानी चाहिए, सबसे पहले भगवान के पास, और भगवान प्याज लहसुन के साथ स्वीकार नहीं करते। तो भगवान को हम चाहते हैं और प्याज लहसुन को भी चाहते हैं, तो चॉइस हमारे पास है, कृष्ण को रखना है जीवन में या किसको रखना है, लहसुन प्याज को। तो भगवान कि हम प्रेमी बनना चाहते हैं, लेकिन उस प्रेमी बनने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, उसके लिए हम तैयार नहीं है, हाँ, तो इसलिए शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की जो सेवा है उसके लिए हमें तत्पर या तैयार होना चाहिए, और कम से कम उन्हें किसी भी स्थिति में रोज 2 बार भोग अर्पित करना चाहिए, कम से कम सुबह उनकी 1 बार आरती होनी चाहिए, अगरबत्ती हो और साथ में 1 दीप हो, कम से कम इतना ऑफर कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं, जो विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह क्या कहते हैं,
अर्चा विग्रह अवतार, भगवान के जो मूर्ति स्वरूप है इसको कहते हैं अर्चा विग्रह अवतार। इस रूप में भगवान आते हैं हमारे ऊपर आहेतु की कृपा करने के लिए, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, उनका स्पर्श कर सके, उनको कुछ खिला सके, जिससे हमारी आसक्ति उनके प्रति होती है। तो विग्रह को वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे जन्म लिए हुए बच्चे को हम ट्रीट करते हैं। किसको ट्रीट करते हैं? एक छोटे से बच्चे को। वो बच्चा थोड़ी माँ से मांगता है कि मुझे भूख लग रही है। हाँ, माँ को पता चलता है अभी उसको भूख लगी है, उसको नहलाना है, खिलाना है। उसी प्रकार की भावना विग्रह के साथ हमें रखनी चाहिए। तो जब हम ऐसी बच्चे की माता सेवा करती रहती है दिन रात, फिर वो बच्चे से इतना प्रेम हो जाता है कि अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होती है, उसके लिए सब कष्ट झेलने के लिए तैयार होती है। तो उसी प्रकार से हाँ, हम जो गोपाल या राधा कृष्ण गौर निताय है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनकी सेवा की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। जब ऐसी भावना होती है तो कृष्ण न मांगते हुए भी हमसे क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं अपनी सेवाओं को। मुझे एक डिवोटी बता रहा था कि वो बद्रीनाथ गए थे, वह बहुत ठंड थी, रास्ते में जाते जाते वो एक आश्रम में रुके। आश्रम में रुके तो उस आश्रम में रात को जब रह रहे थे तो वहां गोपाल के विग्रह थे, लड्डू गोपाल। तो वहां हाँ, वो जो भी बाबा जी होंगे वहां सेवा करने वाले, गोपाल जी को रखा था उन्होंने। और रात को ये सब लोग सो गए तो गोपाल जी उस बाबा जी को डांटते हैं, अरे तुम तो इतनी ठंड थी, उन्होंने कहा तुम तो कंबल ओढ़ के सो रहे हो और मुझे जा रखा है, वह खिड़की खुली है, मेरे ऊपर कोई वस्त्र नहीं और मुझे इतनी ठंड लग रही है, हाँ उठो उठो। तो गोपाल जी उसको उठाते हैं, अरे जो भक्त था वो भी उठ जाता है, देखता है तो सही है खिड़की क्या थी, वहां खुली हुई थी और गोपाल वैसे के वैसे बैठे हुए, उनके ऊपर विंटर के कोई कपड़े नहीं है, हाँ कुछ चीज नहीं है। इस प्रकार से भगवान पे मूर्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से व्यक्ति को हम ट्रीट करते हैं वैसे ही विग्रहों को भी हमें ट्रीट करना चाहिए, उनकी सेवा उसी भांति हमें करनी चाहिए। तो फिर भगवान से हमारा जो प्रीति है वो बढ़ता है। हाँ, तो वो बढ़ाने के लिए हमें हम भक्तों के संग में आना चाहिए और संग में आकर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद अपने साथ जाते समय भगवान के विग्रह को नहीं ले गए, अपने साथ क्या ले गए? सर्वप्रथम भगवान के नाम को ले गए। हाँ, उन्होंने कहा मुझमें एक ही, मुझमें कोई योग्यता नहीं है। वो जब भारत से अमेरिका गए, जल्दू जहां से एक महीना समंदर का सफर करते हुए 70 साल की आयु, 40 रुपए जेब में और अमेरिका व्यक्ति पहुंच रहा है, एक ब्रेकफास्ट का पैसे भी नहीं था, वहां पहुंचे तो अपने साथ विग्रह को नहीं ले गए लेकिन कृष्ण का जो नाम है उसको ले गए। उन्होंने कहा मुझमें योग्यता नहीं है लेकिन भगवान के नाम के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो भगवान के नाम को उन्होंने दिया और जहां भगवान का नाम उच्चारित होता है वहां विग्रह रूप में क्या आ जाते हैं? कृष्ण आ जाते हैं। तो पहले कोई विग्रह नहीं था वहां, तो सारे जो भक्त हैं, जो भी लोग जुड़े थे वहां, युवा युवतियां सारे कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। अचानक एक अमेरिकन जो युवती पति पत्नी थे, तो वो जो स्त्री थे जिनका नाम था मालती, वो इंडियन स्टोर में गई और उन्होंने सोचा स्वामी जी तो भारत से हैं, उनको कुछ गिफ्ट देती हूँ, भारतीय वस्तु कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो एक भारतीय इंडियन स्टोर में गए तो वहां उनको छोटे छोटे डॉल नजर आए, 3 डॉल थे। तो उसने एक डॉल खरीदे और आए और प्रभुपाद जब बैठे थे रूम में, उनको कहा स्वामी जी आपके लिए गिफ्ट लाए हूं। तो देखा तो जैसे उन्होंने दिखाया तो प्रभुपाद अपने आसन से उठे और दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभुपाद ने कहा ये अकेले नहीं है, इसके साथ और 2 होने चाहिए।
हाँ तो वो कहते हाँ और दो थे वहां, वो दौड़ के जाती है और दो ले आती है। तो तीन मिलके कौन कौन थे, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन के सबसे पहले विग्रह है। तो प्रभुपाद कृष्ण नाम को ले गए जिसमें भगवान स्वयं विग्रह के रूप में अवतरित हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें भगवान के नामों का गंभीरता से उच्चारण करना चाहिए। हम हरि नाम का जप नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। और फिर कृष्णा क्या करेंगे, आपके पास आ जाएंगे, स्वयं रूप स्वयं आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए आप प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र में हजारों उदाहरण हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमारे जो भौतिक भोग करने की भावना है उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हम जब घर में कृष्ण को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, अपने घर के अपने जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाते हैं, तो फिर ये जो भोग की भावना है वो सेवा की भावना में परिवर्तित हो जाती है। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए सब एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।